खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से। आज हम चंद एक हवाला जात को देखेंगे इससे पहले कि हम अपने मेन हवाले को जो इफ़सियों 3 बाप उसकी 6 आयत में हमारे लिए लिखा हुआ है उस पर बातचीत करें। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखें समझें, आएं चंद लम्हों के लिए खुदा के हुज़ूर झुक जाएं। जैसे बीज बोने से पहले ज़मीन की तैयारी ज़रूरत है, जैसे कोई भी काम करने से पहले हमें तैयार होने की ज़रूरत है, वैसे ही खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे दिलों की ज़मीन ऐसी हो कि जब उसका कलाम बीज की मानद बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। आए हम दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, हम दिल के खुदाम खुदा नजराने तेरे पास लाते हैं और तू दिलों पर नजर करता है। सो कादर मुतलक खुदा, हमारे दिल को छू और हमारी सोचों ख्यालों पर खुदावन तेरा इख्तियार चाहते हैं। हम सबको अपने कलाम की हिकमत और दनाई बख्श। आज हम जो कुछ भी सीखें यीशु मसीह के नाम की खुदा खुदा खातर हम सबको अपने जलाल के लिए समझने की, कबूल करने की और खुदावंद तेरी पहचान में आगे बढ़ने की कुव्वत बख्श। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इफ़सियों 3 बाप उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे और पालूस रसूल कहता है, इसी सबब से मैं पालूस जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा जिसे तुम पढ़कर मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ जो और ज़माने में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। सो इससे पहले कि हम 6 आयत पर गौर करें, सवाल यह है कि गैर कौम किन को कहा गया है? गैर ईमानदारों को, जो यहूदी नहीं थे, जो इसराइल के खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, उनको क्या कहते हैं? गैर ईमानदार। जिनको क्या कहा गया है? गैर कौमें। जिनको क्या कहा गया है? बेदीन लोग। कह सकते हैं कि जो मसीही या उस मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, जो खुदा का बेटा है, जो इसराइल की उम्मीद था, जो हमारा भी क्या है? नजात दहिंदा है। सो गैर कौम, यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल, हमने पिछले दिनों में सीखा, वो कहता है कि मुझे गैर कौमों के लिए खुदा ने मखसूस किया, मुकरर किया, अलहदा किया, चुन लिया। जैसे आप बहुत दफा, सादा सी मिसाल, हम बहुत दफा कोई अच्छे कपड़े चुनाव करते हैं कि ये मैं फलां रिश्तेदार की शादी पर इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, तो हम किसी चीज को अलहदा कर लेते हैं। बहुत दफ़ा हम कोई हदिया या शुक्रगुजारी अलहदा कर लेते हैं कि ये खुदावन खुदा के लिए है। और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से हवाला जात, बहुत सी मिसालें, बहुत से वाक्यात मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हन्ना, जो बेअलाद थी, जिसके पास अलाद नहीं थी, उसने खुदा के हजूर मन्नत मानी कि खुदावंद अगर तू मुझे बेटा दे तो वो बेटा तेरी खिदमत करेगा और वो उम्र भर तेरा क्या होगा? तेरा खादम होगा और तेरा काहिन होगा और तू उसे इस्तेमाल अपने जलाल के लिए करना। तो उसने क्या किया? अपने बेटे को खुदा की खिदमत के लिए बचपन ही से मखसूस कर लिया, इससे पहले वो पैदा होता। सो पालूस कहता है कि मुझे भी मेरी माँ के पेट के सूर मेरी माँ के पेट में सूरत पकड़ने से पहले ही खुदा ने चुन लिया था। इसी तरह हमको भी खुदा ने अलहदा किया है। किसमें? लिखा है छठी आयत में, यानी ये के मसीह यसू में गैर कौमें मसीह यसू में, यसू मसीह में हमें भी जो एक वक्त क्या थे, गैर कौम थे। हम यहूदी पैदा नहीं हुए। यहां पर कोई यहूदी है तो वो अपना हाथ दिखाए, कोई भी नहीं। यहां पर कोई इसराइल का रहने वाला है, कोई भी नहीं। यहां पर किसी के रगों में यहूदी खून हो, या बाप दादा परदादा, या कोई हमारी 10-20 पुश्ते पीछे चले जाएं, कोई पता नहीं। तो हम कलामे खुदा के आईने के मुताबिक क्या गिने जाते थे? गैर कौम। लेकिन अब मसीह यस्सु में किस तरह हम उसके अपने लोग हुए? खुशखबरी के वसीला से। किसके वसीला से? खुशखबरी के वसीला से। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि गैर कौमों की हालत क्या थी, हम इस पर गौर करेंगे। सो गैर कौमों के लिए कौन सी चीजें दस्तियाब सी और किन चीजों का उनको इनकार था, कौन सी बरकतें उनको हासिल नहीं थी। जब हम गैर कौमों के लिए देखते हैं तो पालूस रसूल पिछले ही बाप में उसकी 12वीं आयत में कहता है, दूसरे बाप की 12वीं आयत में कहता है कि ये गैर कौमों की हालत थी। अगले जमाना में मसीह से जुदा, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ और ना अमीर और दुनिया में खुदा से जुदा थे, ये गैर कौमों की हालत थी। इससे हमें पता चलता है कि पालूस रसूल इस खुशखबरी को खुशखबरी क्यों कहता है, क्योंकि गैर कौमें जो खुदा से जुदा थी, मसीह के वादों से दूर थे, उस इसराइल की बरकात से जो इसराइल के खुदा ने इब्राहिम के वसीला से बख्शी, उन सब से क्या थे? जुदा थे, दुनिया में खुदा से अलहदा थे। तो किस तरह वो तमाम बरकतें उनको मिली जो दूर थे? क्या लिखा है 13वीं आयत में दूसरे बाप की, मगर तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले दूर थे। यहां पर बात हो रही है रूहानी तौर पर, कि तुम रूहानी तौर पर खुदा की बख्शिश और रहम और उन तमाम बरकात से दूर थे जो सिर्फ और सिर्फ यसु मसीह में पाई जाती हैं। तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यसु में, अब मसीह यसु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। यसु मसीह के कफारा के वसीला से तमाम कौमों को क्या हुई? खुदा तक रसाई हुई, पहुंच हुई, खुदा तक जाने का रास्ता बना। और यही बात पालूस कहता है, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से हमारी सुलह हुई। हम जो दूर थे, हम जो खुदा से जुदा थे, यीशु मसीह के खून के सबब से। सो ये गैर कौमों की हालत थी। खुदा के वादों से कोई भी उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहूदी कहते थे सिर्फ खुदा हमारे ही लिए, मसीह हमारा ही है, हमारे लिए ही पैदा हुआ है, हमारा ही बादशाह है और किसी का नहीं। लेकिन जब यसु मसीह आए तो यसु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है, ना कि मैं सिर्फ इसराइल की भेड़ों के लिए, बल्कि मैंने तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दी है। अगर उसने, हम इस बात को मान भी लेके यसु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आया, तो फिर आज हम क्यों यहां पर मौजूद हैं? वो हम सब के लिए भी आया है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, ना कि ये कहा गया है कि खुदा ने इसराइल से मोहब्बत रखी। ये नहीं कहा गया कि खुदा ने सिर्फ बैतलहम के रहने वालों से मोहब्बत रखी। खुदा कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी कि पूरी दुनिया के लोग, जिनमें आप और मैं भी शामिल हैं। सो ये गैर कौमों की हालत थी। और गैर कौमों के लिए खुशखबरी क्या थी? मेरे साथ एक हवाला निकाले, रोमियो 8:15। रोमियो 8:15, मसीह से जब हम जुदा थे तो मसीह से जब रोमी लोग जुदा थे तो पालूस रसूल उनको याद दिलाता है कि तुम पहले रूहानी तौर पर मुर्दा और गुलाम थे, लेकिन अब तुम्हारी हालत क्या है। पालूस कहता है, 8 बाप, रोमियों 8 बाप उसकी 15 आयत, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। अब हम गुलाम नहीं बल्कि ले पालक बेटे लेकर पाले हुए उस वादा में शरीक हैं, और खुदा के क्या हैं, बेटे और बेटियां। और हम खुदा को क्या कह सकते हैं, अब्बा यानी कि ए बाप कहकर उसे पुकार सकते हैं। और 16वीं आयत में लिखा है कि रूह कुद्दस जो हमारे अंदर है क्या कहता है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। कहां हम जुदा थे, कहां पर हम खुदा के वादों से नावाकिफ थे, कहां हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी, अब यहां पर वो क्या कहता है खुदा का कलाम कि तुम खुदा के फर्जंद हो। और ये फर्जंद खुदा का कलाम क्या कहता है, कोई भी है, खा कोई गुलाम है, आजाद है, सफेद है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी जुबान बोलता है, किसी भी कबीले से उसकी वाकफियत है, वो खुदा का फर्जंद किस तरह बन सकता है। हम किस तरह खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, उस पर ईमान लाने से। किस तरह खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, ईमान लाने से। सो मेरे साथ एक हवाला देखें कि ये बात अपनी तरफ से है या फिर खुदा का कलाम कहता है। गलतियों मेरे साथ निकालें, गलतियों 3 बाप एक बार निकालें, उसके बाद अगले हवाले को देखेंगे। गलतियों 3 बाप, गलतियों 3 बाप उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ताकि शरीयत के मुतहदों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। उन तमाम लोगों को जो गलतिया की कलीसिया में थे, वो क्या कर रहे थे, वो शरीयत के बंधनों में दोबारा बंध गए। गलतियों 4 बाप, माजरा चाहता हूं, 4 बाप उसकी 5 आयत, 4 बाप उसकी 5वीं आयत, ताकि शरीयत के मुतहदों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। 6वीं आयत में लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। पस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हो, और जब बेटे हो तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुए। गैर कौमों को गुलाम समझा जाता था, गैर कौमों को नीच समझा जाता था, यहूदी सोच के मुताबिक। तो खुदावंद यीशु मसीह के आने से वो तमाम जुदाई, वो तमाम ऊंची नीची बातें, वो तमाम तकाजे यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने से ख़त्म कर दिए गए। और इसीलिए हम क्या बनते हैं, गैर कौम से यीशु मसीह के वसीला से उन वादों को हासिल करते हैं। जब हम 3रा बाप उसकी 14 आयत को देखते हैं, गलतियों 3 बाप उसकी 14 आयत में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ें, कि मसीह यसु के वसीला से जो हमारे लिए, जिसने वो मौत इख्तियार की, जो मौत बहुत ही दर्दनाक थी, वो मौत वो तमाम चीज़ों का सामना किया। 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लिया। यसु मसीह ने वो तमाम गुनाह और तमाम उस लानत को अपने ऊपर लिया ताकि हम बरकत पाएं, ताकि हम जो गैर कौम थे वो लानत की जिंदगी से निकलकर बरकत को हासिल करें। और क्या लिखा है, مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا، چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ چودھویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابراہیم کے باعث ابراہیم کو جو برکت کا وعدہ دیا گیا تھا ہم بھی اس میں برکت پانے والے بنے۔ اور کیا ہوا؟ غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ کون سی؟ ابراہیم کی برکت۔ اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا تھا۔ ایمان کے وسیلہ سے آپ کو آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ایمان نہیں بلکہ کام۔ کام بہت ضروری ہے لیکن پہلے ایمان۔ اگر ایمان نہیں تو پھر کام مردہ ہے۔ اگر کام ہی کام ہے، ایمان نہیں، تو کام کیا ہے؟ بے فائدہ ہے۔ سو سب سے پہلے ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی سے، جیسے کل کی یہ بات ہے، بغیر ہتھیار کے سپاہی بے کار ہے، ویسے ہی درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اب اس روشنی کو چمکاؤ تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ جو زمین کے ہیں وہ میری تمجید اور عزت کریں۔ سو ایمان کے وسیلہ سے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، اس پر آپ کو اور واضح ہو جائے گا کہ ایمان کے وسیلہ سے ہمیں اور کچھ کیا حاصل ہے۔ کلسیوں تین باپ آپ کو فلپیوں کے خط کے بعد ملے گا، کلسیوں تین باپ اس کی 26 آئے سے۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول، فلپیوں واہ جی واہ، حوالہ ہی غائب ہو گیا۔ اچھا جی، ایک منٹ، پیش دی بجائے ڈنڈا دے دیتا گیا۔ غلطیوں تین باپ اس کی 26 آئے سے، صحیح، غلطیوں تین باپ اس کی 26 آیت۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پالوس کیا کہتا ہے؟ 26 آیت میں کہتا ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے۔ پالوس کیا کہتا ہے؟ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری میں کیا پاتی ہیں؟ میراث پاتی ہیں۔ خوشخبری میں کیا پاتی ہیں؟ وعدہ میں شریک ہوتی ہیں۔ سو غلطیوں تین باپ اس کی 26 آیت میں پالوس کہتا ہے کیونکہ تم سب، اس وقت کے لوگ، آج کے بھی لوگ، تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ خدا کے کیا ہو؟ فرزند، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اور کیا لکھا ہے 27 آیت میں؟ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ اب کیا ہوا؟ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے نام پر بپتسمہ لیا، روح القدس سے معمور ہوئے۔ 28 آیت میں لکھا ہے نہ کوئی یہودی، اب یہودی اور غیر یہودیوں کی جنگ ختم ہو گئی، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اونچ نیچ کی اور چھوت کی بات ہے کہ میں امیر یہ غریب، وہ کالا میں سفید، یہ اونچا میں بڑا، وہ وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں، وہ کہتا ہے جو فضول کی باتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ اسی لیے بے شک ہم کسی بھی شہر سے ہوں، کسی بھی ذات سے ہوں، کسی بھی قبیلے سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، مسیح یسوع میں ہم کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بہن بھائی، ایک خاندان، جسے کیا کہا گیا ہے؟ کلیسیا۔ اب غیر قوموں کو یہ شرف حاصل ہے، कि हम मसीह का क्या हैं, बदन हैं। सो सवाल यह है कि क्या हम मसीह का बदन होते हुए एक दूसरे से मसीह जैसी मोहब्बत करते हैं? अगर नहीं तो करने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखोगे तो क्या ज़्यादा करते हो। मसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं, गैर कौमें ऐसा ही करती हैं। अपने मतलब की मोहब्बत, यीशु मसीह कहता है बगैर मतलब की मोहब्बत आए हम खुदा के जुड़ झुकें।